समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ है खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी बात करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हस्बे दस्तूर हम हाजिर हैं आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स विल बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ द शो, बिकॉज भाई मुकेश नाम है शो का परिक्रमा, तो वील डेफिनेटली गो ऑन द परिक्रमा ऑफ द कंट्री, वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। और अब तो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इंडिया इज बीइंग यू नो सच अ वाइब्रेंट कंट्री, सो आई एम श्योर lots of festivals happening in different parts of the country. तो वो सब कुछ होगा, but first let's start with the headlines.
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी।
Campaigning picks up pace for the first phase of assembly elections in Jharkhand and single phase polls in Maharashtra.
नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 दिन के जल उत्सव का शुभारंभ किया।
And railways to operate 19 festival special trains today originating from Delhi NCR to various parts of the country. And now, Mukesh, it's time for Dateline India. And hamari headlines mein hum log ne mention kiya that Niti Aayog has started the launch of the 15-day Jal Utsav that is being held. To zahir si baat hai, Dateline India ka mauzu bhi wahi hai.
बिल्कुल, नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए आज से 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के साथ साझेदारी में 6 से 24 नवंबर 2024 के बीच 20 आकांक्षी जिलों प्रखंडों में जल उत्सव मनाया जाएगा। 20 राज्यों में शुरू किए जा रहे इस महोत्सव में जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य घरों में जल का सदुपयोग और एजेंसियों के बीच जल प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। स्कूली विद्यार्थियों को जल प्रबंधन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है जिससे वे अपने परिवारों और समुदायों में बदलाव के रूप में कार्य कर सकें।
Yes, the Niti Aayog, in collaboration with the National Jal Jeevan Mission, Department of Drinking Water and Sanitation, and the Ministry of Jal Shakti, is set to launch the 15-day water festival called Jal Utsav. This initiative, spanning 20 aspirational districts across 20 states, aims to raise awareness around water conservation, sustainable management, and efficient usage, fostering community involvement to secure the nation's water resources. The concept of Jal Utsav aligns with Prime Minister Modi's vision, inspired with the success of Nadi Utsav, discussed in December 2023 at the 3rd Chief Secretary's Conference. Through various community-driven activities, the festival seeks to empower individuals, particularly students, to become active agents of change within their families and communities, reinforcing the need for water stewardship in everyday life.
बिल्कुल, 2 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत जल बंधन से होगी जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और स्थानीय लोग जल संपदाओं पर पवित्र धागा बांधेंगे। वे अपने अपने ब्लॉक और जिलों की जल संपदा पर तथ्य पर पत्रक भी जारी करेंगे। पखवाड़े में विभागीय गतिविधियों की योजना पर चर्चा करने के अलावा लोग जल उत्सव की शपथ भी लेंगे जिसमें जल संसाधनों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया जाएगा ताकि विवेकपूर्ण और सतत उपयोग सुनिश्चित हो सके। इस शपथ के माध्यम से समुदायों को जल का उपयोग करते समय 5R यानी सम्मान करना, सीमित करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण और पुनर्भरण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
That's right, Mukesh. And in fact, as we know that one of the aims is to create awareness among people also how to conserve water. So, mere khayal se, you know, choti-choti cheeze agar hum log apne lifestyle mein laye, to they would go a long way in conserving water. Maslan, brush karte waqt hamesha tap ko band kar dena.
Bilkul.
Ya phir RO ke paani ko aap jo hai usko phir se reuse kar le for, you know, cleaning the mopping
the floors. 5 hours mein wahi aata hai.
Yes, absolutely. Or in fact, sirf gharon mein hi nahi. In fact, kyunki maybe obviously the some lack basically attitude happens everywhere. तो कई बार हम देखते हैं सड़कों की पाइपलाइन साफ पानी की जो है पानी ऐसी
पानी रिस रहा होता है, बह रहा होता है,
बह रहा होता है. So,
इसके अलावा और भी एक बात ये होती है कि लोग अपनी गाड़ियों को पीने वाले पानी से धोते हैं और इतना कष्ट होता है कि पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं है और यहाँ पर ये बर्बादी हो रही है.
That's true. In fact, अभी recently जो यमुना की toxicity इतनी बढ़ गई और कितने ज्यादा साउथ दिल्ली जैसे posh areas में एक एक दिन तक पानी नहीं आया. Then people probably काश सबने ये सबक सीखा हो that water is so necessary. You know, it's such a basic necessity to thrive on this planet.
और अगर हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और उनके अगर सुनकर कुछ जागरूकता बढ़े उनकी और ये पानी बर्बाद होने से बच सके तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कहीं पर हम सफल हो पाएंगे.
Yes, in fact, small things that we, for example, I always teach my kids कि आजकल fashion है बहुत ही जो fashionable accessories bathrooms में आई हैं कि बहुत pressure से पानी देते हैं, you know, एक बड़ा सी फुहार के साथ उसको jet spray बोल देंगे whatever. But I've always taught my kids कि आप उसको कम खोलिए क्योंकि जो उतनी कम धार में पानी से काम हो सकता है, हो सकता है आपके 30 seconds extra लगे, but that's okay. You will save a lot of water in that. But these days it's a fashion to probably have these fancy bathroom accessories which probably waste a lot of water. So anyway, I think apart from this Jal Utsav, ये सिर्फ 15 दिन तक महदूद नहीं होना चाहिए.
बिल्कुल, बराबर चलने वाली प्रक्रिया
है. ये तो एक lifestyle का हिस्सा बन जाना चाहिए, isn't it? And throughout the 15-day festival, a series of engaging activities are also planned, including cleaning of water assets, celebration of Jal Sanchay Divas for water conservation, and introduction of water management lessons in schools. Teachers will use stories, experiments, and field trips to educate students on water quality testing and sustainable practices. Students will also have the opportunity to visit water supply and treatment plants, further enhancing their understanding of water resource management. Additional events include a Jal Utsav run, a tree plantation drive under Ek Ped Ma Ke Naam initiative, and skill development programs for Nal Jal Mitra under the Department of Drinking Water and Sanitation. SHGs and ASHA workers will also take part, focusing on capacity building for water conservation.
जी हाँ, जल उत्सव का उद्देश्य जल संसाधनों के संरक्षण में विद्यार्थियों, परिवारों और स्थानीय समुदायों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच जिम्मेदारी की भावना पैदा कर जल को जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल करना है.
Yes, Mukesh, imagine a world where every drop of water is cherished and where our actions today ensure a sustainable tomorrow. Water isn't just a commodity or a resource, it's a fundamental basic right that we must protect for ourselves and those yet to come.
और सायरा, वक्त हो चला है कि अपने जो हमारे श्रोता हैं उनको अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास ले चलें और जानें कि उनके पास क्या कुछ खास है. तो सबसे पहले शुरुआत किससे?
भाई, छठ का मौसम चल रहा है, छठ की पूजा है और बड़ी मतलब बहुत ही विस्तृत पूजा होती है. तो जाहिर सी बात है कि आज भी काफी चीजों से जुड़ी हुई है. तो हम लोग बिहार से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम जो शारदा सिन्हा, एंड सो इंटरेस्टिंग, आई मीन शी वॉज द वॉइस ऑफ ऑल द छठ भजन. उनकी आवाज के बिना कह सकते हैं कि नदी किनारे कभी लोगों ने शुरुआत ही नहीं की होगी छठ की. तो एंड शी पास्ड अवे यस्टरडे. सो लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग इन हर वॉइस.
जी हाँ, बिहार में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए राज्यभर में गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और अन्य प्रमुख नदियों के घाटों पर छठ की तैयारी जोरों पर चल रही है. सूर्यदेव और प्रकृति की पूजा को समर्पित बिहार के सबसे बड़े और मुख्य पवित्र त्योहार छठ पर्व के लिए राज्य के विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं.
Yes, so today you can say at sunset people offer यू नो ऑब्लेशन टू द सन गॉड, और कहते हैं कि डूबते हुए सूरज को पहले अर्घ चढ़ाते हैं. क्यों? क्योंकि मतलब बहुत खूबसूरत सी चीज पता चली कि आप पहले अपने बुजुर्गों को याद करते हैं जो डूबते हुए सूरज हैं, तो जिनकी जिंदगी का सूरज डूबने पे है, तो आप पहले उनको जो है अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं, एंड देन टुमारो पीपल विल प्ले यू नो पे ऑब्लेशन टू द राइजिंग सन. आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिचुअल, एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग मोस्टली इन द रीजन ऑफ बिहार, खरना. द रिचुअल टुडे इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द सेकंड डे ऑफ छठ पूजा सेलिब्रेशंस, एंड आफ्टर प्रेइंग यू नो आफ्टर प्रेइंग टू द सन गॉड एंड मदर छठी मैया, डेविटीज विल ईट खीर एंड रोटी एज खरना प्रसाद. And after the Kharna, a 36-hour long fast of devotees will begin in which they abstain from eating and drinking. So, bahut hi sakht keh sakte hain vrat hota hai ye. So, we wish all the best to all the people who are observing Chhat, and also best wishes to everyone on this occasion. Aur Dharmendra ki bahut interesting report hai Bihar se. Let's listen to it.
Tomorrow evening, oblations or Sandhya Argh will be offered to the setting sun. The festival will culminate on 8 November with morning oblations to the rising sun. Majority of devotees perform Chhat Puja on the banks of rivers on specially decorated Chhat Ghats. The festival symbolizes equality and respect without any discrimination in the society. This year, several inmates in different jails are also observing Chhat Puja. In Khudiram Bose Central Jail in Muzaffarpur, several Muslim inmates are observing Chhat Puja inside the jail premises, where a small water body has been set up by the jail administration. Dharmendra Kumar Rai, Akashvani News, Patna.
और बिहार से अब चलते हैं मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में इंदौर के श्री अरविंदो यूनिवर्सिटी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रसव प्रतीक्षालय का शुभारंभ किया गया है. यह अपने आप में नवाचार है. क्या है प्रसव प्रतीक्षालय और कैसे ये काम करेगा, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा.
अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं और संसाधनों से युक्त प्रसव प्रतीक्षालय में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के एक से दो सप्ताह पहले से ही सभी जरूरी सुविधाएं और सहूलियतें प्रदान की जाएंगी. अरविंदो अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद भंडारी ने बताया कि प्रसव प्रतीक्षालय में जैसे ही कोई महिला प्रसव के लिए एडमिट होगी, उसकी 24 घंटे सतत निगरानी के साथ सभी तरह की सावधानियां रखनी शुरू कर दी जाएंगी. उन्हें एंटी नेटल एक्सरसाइज कराने के साथ साथ एंटी नेटल डाइट भी दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं को फिजियोथेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, बर्थिंग बाथ एक्सरसाइज, अरोमा थेरेपी जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. पूरी तरह से वातानुकूलित प्रसव प्रतीक्षालय में मरीज के साथ आए परिजन की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा. प्रसव प्रतीक्षालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. मेडिकल टूरिज्म डेवलपमेंट करने की सोच भी विकसित हो रही है. प्रसव प्रतीक्षालय की पहल स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी.
आज प्रसव प्रतीक्षालय उद्घाटन कार्यक्रम में, प्रसव प्रतीक्षालय में लगता है कि ये शब्द ही पूरे देश में हॉस्पिटल के नाते से अरविंदो यूनिवर्सिटी ने इसका इंट्रोड्यूस कराया. मेरी अपनी ओर से पूरे अरविंदो परिवार को आज का जमाना ये नवाचार का जमाना है, नए नए प्रयोग का, नए कल्पनाओं का, नए सोच का, और खास करके बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे लोग भी पीछे नहीं है, मध्यप्रदेश भी पीछे नहीं है.
उन्होंने कहा कि अरविंदो अस्पताल प्रबंधन का चिकित्सा सेवा भाव अनुकरणीय है. मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेने की पहल का स्वागत करते हुए शासन की ओर से हर संभव सहयोग के लिए आश्वासन दिया. कार्यक्रम में डॉक्टर भंडारी ने बताया कि श्री अरविंदो विश्वविद्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सिविल अस्पतालों में शिशु मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य शासन के साथ मिलकर काम करेगा. वह सरकार के NRHM के साथ ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का विस्तृत मॉडल प्रोजेक्ट तैयार कर सबसे पहले इंदौर और उज्जैन में लागू करेगा. परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा.
और सायरा, जैसे आपने शुरू में बताया था कि भारत में हर कोने में त्योहार चलते रहते हैं, तो मणिपुर भी ऐसा राज्य है जहां पर हर समुदाय जो है वो साल भर में अपने अपने खास त्योहार मनाता है.
यस, बिकॉज वी ऑल नो दैट मणिपुर एंड स्पेशली मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज, और हर ट्राइब के अपने मखसूस त्योहार और रिचुअल्स होते हैं. सो इवन दीज डेज सम फेस्टिवल्स आर यू नो ऑर्गेनाइज टू ब्रिंग कॉमनल हार्मनी एंड यूनिटी अमंग अदर ट्राइब्स, एंड वन सच फेस्टिवल इज निंगोल चाकू. Today we bring you more about the Ningol Chakuba Festival, which is celebrated in Manipur, from our Imphal correspondent J.J. Thokchom.
Ningol Chakoba Festival is one of the biggest festival of Manipur. The festival is being organized on the Hiangai Nini Panba of Maitei calendar. This year, the festival was organized on 3rd October across the state. The festival symbolized the bond of love between married women and their paternal family. The festival was organized in different states and countries where Manipuri reside. The main component of the festival is to have splendid feast and gift to married women. Nowadays, the festival has expanded and many organizations have started organizing the Ningol Chakoba Festival for indigenous community also. Ningol Chakoba Festival has become a festival of love and communal harmony in the state. Jai Jai Thaksom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
And now we bring you a tour of India's freedom struggle, and we'll recall the events that happened on this day in Azadi Ka Safar.
In today's episode, we remember freedom fighter Mangal Das Pakwasa, who left us on the 6th of November 1968. A social worker and politician in post-independence era, he was a confidant of Mahatma Gandhi and one among the first five Indian governors. He served as the governor of Madhya Pradesh, Bombay and Mysore, and was the first president of the Bharat Scouts and Guides from 1953 to 1960.
Mangal Das Pakwasa was born in Mumbai on 7th May 1882. He graduated from the Bombay University in 1903 and completed his law studies, winning Arnold Scholarship in Hindu Law. He became associated with the freedom struggle movement and left his robust practice as a successful solicitor during the civil disobedience movement to take part in Dandi March, for which he was imprisoned.
Mangal Das was a leading member of the All India Village Industries Association and also served as its honorary legal advisor. After Indian independence, he was active in his social and political career and became a member of the Bombay Legislative Council.
Mangal Das passed away on November the 6th, 1968, but he remained committed to reaching out to citizens of India till the very last. We salute the nationalistic zeal of this great Gandhian.
On the 6th of November in 1913, Mahatma Gandhi was arrested for leading a march of more than 2,000 people in a peaceful protest of Satyagraha against the unfair tax on Indian immigrants in South Africa.
As I said, leading Indians in South Africa in protest against injustice was part of Gandhiji's learning curve. Through his experiments in South Africa, Gandhiji understood the diversity of the Indian community and the importance of creating spaces that were open to all people, irrespective of religion, caste or creed. These experiences provided him a template for the long struggle that lay ahead in India.
During this time, Gandhi was not arrested just once, but thrice, back to back. He was first arrested on November 6th, then released the next day on bail paid by Herman Kallenbach, a good friend of Gandhi. Gandhi was arrested again on the 8th and released the same day. Finally, he was arrested on the 9th and sentenced at first for 9 months of imprisonment, but later extended to 12 months.
However, he was unexpectedly released on the 18th of December 1913. In 1914, the Indian Relief Bill abolished the £3 tax imposed on Indians who had not renewed their indentures and also recognized the validity of Indian customary marriages. Thus, the peaceful struggle gained its objectives.
A आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा, मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा के साथ। और कार्यक्रम में वक्त हुआ है व्यापार जगत की हलचल जानने का।
Yes, Mukesh, the domestic benchmark indices today continued their upward momentum for the second consecutive session amid positive global cues. The 30-share BSE Sensex surged 901 points or 1.13% to close at 80,378, while the Nifty 50 added 271 points to settle at 24,484. In the global crude market, Brent crude was trading at 1.69% down at $74.25 per barrel, and WTI crude shed 1.67% to trade at $70.79 per barrel. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading down at 78,460 rupees for 10 grams, and silver 999 fine was also trading down at 93,870 per 1 kilo when reports last came in. और खेल जगत से क्या खबर है मुकेश आपके पास?
बिल्कुल, भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने केमैन आइलैंड में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर वेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है। उन्होंने कल ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को 10-0 से हराया। इसके साथ ही मनदीप किसी भी प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। वर्ष 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले मनदीप को अपने पेशेवर करियर में अब तक केवल एक हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपने 12 मुकाबलों में से 11 जीते हैं, जिनमें से 7 नॉकआउट जीत दर्ज की हैं।
And there's one more news of the IPL from the world of sports. Well, the Indian Premier League's 2025 mega auction will take place in Jeddah on the 24th and 25th of November. The event, scheduled at the Abadi Al Johar Arena, Benchmark Arena, marks the second consecutive year the auction has moved overseas following Dubai's hosting in 2024. A total of 1,574 players have registered for the auction by November 4 deadline, comprising 1,165 Indians and 409 international cricketers. The player pool includes representatives from emerging cricket nations such as Italy, Canada, the Netherlands, Scotland, US and UAE, alongside full member nations, with Pakistan being the only exception. Following the retention phase, franchisees can build squads of up to 25 players with 204 slots available for the taking. Indian Ambassador to Saudi Arabia, Dr. Suhail Ijaz Khan, welcomed the development, describing it as a historic first for Saudi-India relations. And the ambassador also said that hosting the auction in Jeddah would not only showcase Saudi Arabia's emergence as a global sports and entertainment destination, but also boost cricket's development within the kingdom. And I quote him, "Bringing this prestigious auction to Jeddah will serve as a catalyst for popularization and development of cricket in the kingdom," he concluded.
और कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है कि हम उन महान व्यक्तियों को याद कर लें जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो इस क्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में भारतीय अभिनेता संजीव कुमार को, उनकी आज पुण्यतिथि है। और इनका जो नाम था हरिभाई जरीवाला था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वे अपने दूसरे नाम संजीव कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिल्मी दुनिया में संजीव कुमार ने नायक, सहनायक, खलनायक और चरित्र कलाकार की भूमिकाओं को निभाया। इनके द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध फिल्मों में कोशिश, शोले, अंगूर, त्रिशूल, पारस, अनामिका, खिलौना, मंचली, शतरंज के खिलाड़ी, सीता और गीता, आंधी, मौसम, विधाता, कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से फिल्म में चार चांद लगाए।
That's true. He is well remembered for his versatility and genuine portrayal of his characters. He acted in genres ranging from romantic dramas to thrillers and was voted the 7th greatest actor of Indian cinema of all time in a poll that was conducted by an online portal. And his double role in the film Angoor was listed among the 25 best acting performances of Indian cinema by Forbes India. He won several major awards, including 2 National Film Awards for Best Actor for his performances in movies Dastak and Koshish. And unlike his peers, he did not mind playing roles that were non-glamorous, such as characters well beyond his age. Movies such as iconic character of Thakur in Shole, Arjun Pandit and Trishul, along with remakes of Tamil films into Hindi such as Khilona, Khilona, Naya Din Nayi Raat, Yahi Hai Zindagi, Devta and Ram Tere Kitne Naam exemplify his versatility. In fact, Naya Din Nayi Raat mein unhone kitne sare roles kiye hain, nau ras jo hote hain unko
sare unhone dikhaye.
Absolutely. And he also did suspense thriller films such as Shikar, Uljhan, Trishna and Qatl. He proved himself to do comedy roles as well in films such as Manchali, Pati Patni aur Woh, Biwi aur Biwi, Angoor and Hero.
Bilkul, to kyun na unki film jo hai Shole, uska dialogue sun liya jaye.
Saap ko haath se nahi, pairon se kuchla jata hai kabar, tere liye to mere pair hi kaafi hai. बहुत जान है इन हाथों में. कब्बर, ये हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे.
और सायरा संजीव कुमार का जन्म मुंबई में 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था और वो बचपन से ही फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखा करते थे. इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन के शुरुआती दौर में रंगमंच से जुड़े और बाद में उन्होंने फिल्मवाले के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया. तो क्यों ना उनकी फिल्म आंधी का ये गाना सुना जाए.
तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है. नहीं तो चराहों से लौ जा रही थी.
जीने की तो
वर्ष 1962 में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की निर्मित फिल्म आरती के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया जिसमें वो फेल हुए थे और सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार को वर्ष 1965 में फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला. उन्होंने एक और फिल्म सीता गीता में बहुत अच्छा अभिनय किया था. तो क्यों ना इस फिल्म का गाना सुना जाए.
हवा के साथ साथ,
अरे रे रे,
घटा के संग संग,
संभालना.
हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल,
मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल,
मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल.
वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म संघर्ष में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन संजीव कुमार अपनी छोटी सी भूमिका के जरिए दर्शकों में प्रसिद्ध हुए और इसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंग, सत्यकाम और अनोखी राज जैसी फिल्में मिली और उसमें उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े थे. तो एक और उनका गाना हम लेकर आए हैं, वो और सुनते हैं मंचली.
हम का फसाना बन गया अच्छा,
अच्छा जी,
एक बहाना बन गया अच्छा,
अच्छा,
सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा.
गम का फसाना बन गया अच्छा,
अच्छा जी,
एक बहाना बन गया अच्छा, सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा.
Today we are also remembering Karan Deewan, an Indian actor predominantly who was famous in Hindi films. He worked in over 70 films from 1940s to late 70s एंड इवन दो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन उनकी कई सारी फिल्में, स्पेशली रतन फिल्म वाज वन ऑफ हिज डिसाइसिव फिल्म्स व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बाय हिज ब्रदर जयमानी दीवान, एंड द मूवी हैड टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर 1944. उन्होंने कई गाने भी गाए हैं मुकेश, जब तुम ही चले परदेस, एंड इन फिल्म्स लाइक पिया घर आजा, मिट्टी के खिलौने. लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम हिज फिल्म्स.
जब तुम ही चले परदेस, लगा कर ठेस ओ प्रीतम प्यारा, दुनिया में कौन हमारा.
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर. साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं. तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा को. नमस्कार, नमस्कार.